प्रस्तुत है महिला हिंसा अभियान की आखिरी कड़ी। जोहार श्रोताओं, मैं बसंती
और मैं शशि
स्वागत करते हैं आपका महिला हिंसा अभियान की आखिरी कड़ी में।
बसंती, क्या तुम्हें याद है महिला हिंसा अभियान की शुरुआत हमने 25 नवंबर को किया था और देखते ही देखते आज हम इसकी आखिरी कड़ी प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सफर कैसे पूरा हो गया पता ही नहीं चला।
हाँ शशि, यह सफर हमारे श्रोताओं की भागीदारी के बिना सफल नहीं होता, इसलिए हम अपने सारे श्रोताओं और प्रतिभागियों का जिन्होंने अपनी राय, प्रतिक्रियाएं और अनुभव को हमारे साथ साझा करके इस अभियान को सफल बनाया है, इन सबों को झारखंड मोबाइल वाणी की तरफ से ढेर सारी बधाइयां।
बसंती, पिछले कड़ी में तो हमने झारखंड महिला आयोग की अध्यक्षता श्रीमती महुआ माझी और झारखंड महिला सामाख्या सोसाइटी की निदेशक श्रीमती स्मिता गुप्ता जी का साक्षात्कार प्रस्तुत किया था, जिससे हम और हमारे श्रोता लाभान्वित हुए थे। तो बसंती, आज हमारे श्रोताओं के लिए क्या लाई हो?
शशि, आज हम अपने श्रोताओं के लिए लाए हैं झारखंड महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सबनम प्रवीण जी का साक्षात्कार।
जोहार सबनम जी, आपका हमारे महिला हिंसा कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हमें यह बताइए कि किस तरह की हिंसा से प्रताड़ित महिलाएं महिला आयोग की सहायता ले सकती हैं?
महिला किसी भी तरह से अगर प्रताड़ित हो रही है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, दैन प्रथा हो, किसी तरह का भी, तो वो महिला आयोग में अपना कंप्लेन दर्ज करके उससे अपना जो उसको तकलीफ है, जिससे वो पीड़ित है, उससे निजात पाने के लिए अपना सहायता ले सकती है।
हमें यह बताइए कि आपके पास सबसे अधिक किस किस प्रकार के मामले आते हैं?
हमारे पास सबसे ज्यादा ये घरेलू हिंसा, सबसे अधिक घरेलू हिंसा के ही केस आते हैं, और बाकी जो ट्रैफिकिंग है ये सब का भी है केस, लेकिन उसकी संख्या कम है, लेकिन घरेलू हिंसा की सबसे ज्यादा है। और ये दोई एक्ट, जिसमें दहेज से संबंधित मामले ज्यादा आते हैं।
महिला आयोग प्रताड़ित महिलाओं की सहायता किस प्रकार से करती है?
कोई भी महिला जब महिला आयोग में कोई कंप्लेन लेकर आती है, तो हम लोग नोटिस के माध्यम से दोनों पार्टी को बुलाते हैं और हम लोग काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करके चाहते हैं कि जो है मैटर वो वहाँ पे कम्प्रोमाइज हो जाए और मतलब कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़े, वहीं पे मामला सलट जाए और वो लोग अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जिए।
आप हमें झारखंड महिला आयोग की नई टीम और आने वाले कुछ नए कार्यक्रमों के बारे में बताएं।
अभी जो हमारी टीम है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमारी अध्यक्षा भी है और जो हमारी एक और मेंबर है, हम लोग मतलब मिलकर चाह रहे हैं कि लोग जाने कि महिला आयोग क्या है, लोग जाने और उसका फायदा उठाएं, क्योंकि सरकार ने जिस मकसद से इस महिला आयोग को बनाया है तो उसका लाभ महिलाओं को मिले, और हम लोग दिन रात इसके लिए चिंतित हैं कि हम लोग किस तरह से ज्यादा ये कर लें, क्योंकि हम लोगों ने एक ये भी रखा है कि हम लोग ओपन कोर्ट भी लगाएंगे और प्रत्येक जिला में जिस डिस्ट्रिक्ट का ज्यादा केस हो जाएगा हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कार्यालय है वो काफी दूर है और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो वहां तक आने में असमर्थ हैं, वहां तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग उन महिलाओं तक जाएं और उनकी बातों को सुने और उनके प्रॉब्लम को दूर करें, क्योंकि सभी महिलाओं का वहां तक पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए महिला आयोग उन महिलाओं तक जाएगी और जहां पे केसेस की कुछ संख्या हो जाएगी हम लोग वहां पर जाके ओपन कोर्ट करेंगे, मोबाइल कोर्ट करेंगे। ये हम लोगों ने अपने मतलब ये किया है, प्रस्ताव रखा है अपने मतलब मेंबर और अध्यक्ष के लिए।
जैसा कि आप जानती हैं कि झारखंड में पलायन भी एक अहम मुद्दा है, तो ऐसे में पलायन के कारण महिलाओं को किस प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है, महिला आयोग इसमें उनकी क्या मदद कर सकता है?
पलायन का सबसे मेन कारण होता है स्वरोजगार, उनके पास रोजगार नहीं रहने की वजह से वो दूसरी जगह जाती हैं अपने रोजगार की खोज में और उनको बहुत तरह से वहाँ पे प्रताड़ना मिलता है, इसलिए हम महिला आयोग की तरफ से यही करना चाहेंगे कि सबसे पहले महिला शिक्षित बने और स्वरोजगार से जुड़े, क्योंकि स्वरोजगार से जुड़ेंगी बहुत सारे सरकार ये स्कीम चला रही है महिलाओं के लिए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके भी वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती है, तो उस तरह से जो सरकारी योजना है उसका लाभ उठा करके और उसे उसमें आत्मनिर्भर बन करके पलायन को रोका जा सकता है।
महिलाएं किस प्रकार से महिला आयोग से सहायता ले सकती हैं? इसकी प्रक्रिया बताएं। क्या महिला आयोग के ऐसे कोई हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आपातकालीन स्थिति के दौरान महिलाएं सहायता के लिए कॉल कर सकती हैं?
महिला आयोग का अपना नंबर है, वो ऑफिस का नंबर है, उसमें भी कॉल करके वो अपना केस दर्ज करा सकती हैं और बाय पोस्ट भी वो अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं। और इसकी प्रक्रिया है कि जो भी उसे प्रॉब्लम है तो वो उसे अच्छा से एक एप्लीकेशन बना के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के नाम से और वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करा सकती है और उसके बाद वहाँ पे हम लोग उस पर उसे केस का नंबर मिल जाता है और हम लोग उसे नोटिस के द्वारा दोनों को बुलाते हैं और बुला करके उनका प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करते हैं।
आप झारखंड वासियों को, खासकर महिलाओं को, किस प्रकार का संदेश देना चाहती हैं कि अगर उनके साथ हिंसा हो रही है तो वे इसका विरोध करने के लिए किससे और कहां से सहायता मांग सकती हैं?
जोहार, मैं शबनम परवीन, मैं राज्य महिला आयोग की सदस्य बोल रही हूं। मैं झारखंड की महिला को तो सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि वो उनके साथ अगर किसी तरह की कोई घटना या कुछ होती है तो उसका पुरजोर विरोध करे। वो उत्सुक रह करके सहना नहीं है बल्कि उसका विरोध करना है, लोगों को इसके मतलब बताना है कि हाँ हमारे साथ ये गलत हो रहा है और उसको मतलब प्रताड़ना सहना भी एक बहुत बड़ी अपराध है, इसलिए अगर उनके साथ किसी तरह का प्रताड़ना होता है तो उसके लिए वो आवाज उठाएं और वो बोल्ड बने, बोल्ड बन करके वो अपने जो समस्या है उसको रखें और उससे निजात पाएं।
आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हमें, आशा करते हैं कि हमारे श्रोता भी इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो आइए अब सुनते हैं दर्पण संस्था के निदेशक श्रीमती रजनी जी का साक्षात्कार।
जोहर रजनी जी, आपका हमारे महिला हिंसा कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले हमें यह बताएं, आपकी संस्था महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए क्या क्या कार्य करती है?
हमारी संस्था महिलाओं को बनाने के लिए उन्हें जागरूक कर विभिन्न प्रकार के कौशल विकास हेतु समय समय पर विभिन्न ट्रेडों पर प्रशिक्षण आयोजित करती और संस्था स्वयं के स्तर पर उन्हें आर्थिक सहयोग भी प्रदान करती है, जिसे कृषि और पशुपालन के कार्य में सहयोग कर रही है और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। स्वयं सहायता समूहों का निर्माण व संचालन और उसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से जोड़कर भी उन्हें आर्थिक रूप करने का प्रयास कर रही है। संस्था द्वारा विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को जन वितरण प्रणाली से जोड़ने का भी कार्य किया गया है।
आपकी संस्था ने झारखंड में महिला हिंसा रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं?
महिलाओं पर हो रही हिंसा को रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है। पहला है जागरूकता, दूसरा है कानूनी जागरूकता, तीसरा है उनकी क्षमता निर्माण और चौथा है कानूनी सहायता। साथ ही संस्था इस विषय पे जन वकालत भी करती है। संस्था इसके लिए सामुदायिक स्तर पर जन संगठन, दबाव समूह, किशोरी चेतना मंच, ग्राम समिति के माध्यम से इसे सफल बनाने का प्रयास कर रही है। दर्पण सन 2000 से ही महिलाओं के हितार्थ सरकार से विभिन्न मांगे कर रही है, जिसमें हमारी कुछ मांगे जो पूरी हुई है, पहला है राज्य महिला आयोग का गठन, दूसरा है झारखंड में पंचायत चुनाव, तीसरा है विवाह का पंजीकरण और पंचायत स्तर पे पलायन का पंजीकरण। हमारी कुछ मांगे जो पूरी नहीं हुई हैं, पहला है झारखंड में महिला नीति की घोषणा अब तक नहीं हुई है, दूसरा है राज्य के सभी जिलों में महिला हेल्पलाइन की स्थापना नहीं हो पाई है, तीसरा है राज्य के सभी जिलों में महिला थाना को सक्रिय करना, कुछ जिलों में थाना जो है महिला थाना जो है वो सक्रिय है, बाकी जिलों के नहीं है, जिले में महिला कोषांग का गठन, विशेष न्यायालय की स्थापना, हिंसा के शिकार व्यथित महिलाओं के आश्रय व पुनर्वास हेतु स्वाधार गृह की स्थापना और नेक्स्ट है महिला हितार्थ कानूनों को धरातल पर लागू करना और महिलाओं से संबंधित संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।
क्या आप महिला हिंसा के विषय पर अपनी कोई आंखों देखी या अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगी जिसमें आपकी संस्था दर्पण ने अहम भूमिका निभाई हो?
यूँ तो हमारी संस्था गत 15 वर्षों से महिला उत्पीड़न व हिंसा के खिलाफ कार्य कर रही है। इस दौरान हिंसा के विभिन्न स्वरूपों को करीब से देखने व समझने का मौका मिला है। पर हिंसा छोटी हो या बड़ी, हिंसा तो हिंसा ही है, परंतु कार्य के दौरान कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिसे याद करने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रही हूँ वह सन 2006 की है, जिसे हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह घटना विभिन्न महिला संगठनों के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। उक्त महिला जो इस घटना की शिकार हुई है वह एक शिक्षित व संभ्रांत परिवार की शिक्षित महिला थी। ऐसे से वो शिक्षिका थी। विवाह के 9 वर्षों के बाद उनके अपने ही पति के द्वारा दहेज की मांग, इसके लिए प्रताड़ना और फिर उसकी हत्या। दहेज की खातिर अपने ही पति के हाथों अपने ही आंगन में दहेज की बलि चढ़ाई गई। इसका सर कलम कर दिया गया। इसके लिए संस्था ने उक्त महिलाओं को न्याय इस हेतु संस्था ने उक्त महिला को न्याय, उसके बच्चे की सुरक्षा, दोषियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर हत्याकांड विरोधी मंच की ओर से आवाज उठाने का कार्य किया। उक्त घटना में शामिल सभी दोषियों को न्यायालय द्वारा सजा सुना दी गई है। ये मैं मानती हूँ कि ये हमारी संस्था की सफलता है।
प्रताड़ित महिलाएं आपकी संस्था से किस प्रकार से संपर्क कर सकती हैं? अगर आपकी संस्था का कोई नंबर या हेल्पलाइन नंबर है तो जरूर बताएं।
हमारी संस्था चूंकि आरंभ से ही महिला उत्पीड़न के विरोध में कार्य कर रही है और हिंसा की शिकार व्यथित महिलाएं विभिन्न सामुदायिक मंचों के माध्यम से संपर्क बना सकती हैं। दबाव समूह, स्वयं सहायता समूह, ग्राम स्वास्थ्य समिति, किशोरी चेतना मंच, दर्पण महिला समिति, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से या वो कार्यालय से सीधे संपर्क भी स्थापित कर सकती हैं। इस हेतु हमारा संपर्क फोन नंबर जो है वो 9472719944। दूसरा नंबर जो हमारा है 9955661717। और तीसरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो 9430363191।
आप झारखंड वासियों को, खासकर महिलाओं को, किस प्रकार का संदेश देना चाहती हैं कि अगर उनके साथ हिंसा हो रही है तो वे इसका विरोध करने के लिए किससे और कहां से सहायता मांग सकती हैं?
मैं रजनी झारखंड मोबाइल वाणी के माध्यम से आप श्रोताओं को, खासकर झारखंड की महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूं कि महिलाओं पर किसी भी प्रकार के शोषण, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न व हिंसा उनके मानवाधिकार का हनन है। छोटी हो या बड़ी, शारीरिक हो या मानसिक, आर्थिक हो या भावनात्मक, हिंसा तो हिंसा है। हम इसका डटकर विरोध करें। हम किसी भी परिस्थिति में हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि किसी महिला पर हिंसा हो रही है तो उसका विरोध करने के लिए वे विभिन्न स्थानों से सहायता की मांग कर सकती हैं, जैसे स्थानीय महिला संगठन, महिला थाना, स्थानीय थाना, महिला कोषांग, स्थानीय संस्था, संरक्षण अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला मैजिस्ट्रेट, हेल्पलाइन, न्यायालय, वकील, राज्य महिला आयोग इत्यादि से वो सहायता प्राप्त कर सकती है।
आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आप हमारी आज की कड़ी में प्रस्तुत जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। यूँ तो महिला हिंसा रोकने के लिए कई प्रभावी कानून बने हैं, पर महिला हिंसा रोकने के लिए हम सब लोगों को अपना नजरिया बदलना होगा। और वहीं महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही अगर उनके साथ किसी भी तरह की हिंसा होती है तो उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए बल्कि उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, तभी हमारा देश विकास की राह में आगे बढ़ पाएगा।
बिल्कुल सही कहा बसंती। घटना दुर्घटना पर हमारा कोई वश नहीं होता, लेकिन सतर्कता, सावधानी और होशियारी हमें कई विपरीत हालातों से बचा सकती है। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर हर किशोरी, युवती और बड़ी उम्र की महिलाओं को कुछ आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, तभी हम एक हिंसा मुक्त और स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं।
तो श्रोताओं, आज इस महिला हिंसा अभियान की आखिरी कड़ी के बारे में आपकी कोई राय या प्रतिक्रिया हो तो हमें बताएं नंबर 3 दबाकर। अब मुझे और शशि को इजाजत दीजिए।
धन्यवाद।